vez.
Diga.
Yeah.
భక్తిదాంత స్వామి చప్రాపద్మనాథ్కి, శ్రీ శ్రీ కృష్ణ బలరామ్కి, శ్రీ శ్రీ గోవిందాయికి ఆల్ గ్లోరీ. శ్రీ సముద్ర బొడి ఆల్ గ్లోరీ, సముద్ర బొడి ఆల్ గ్లోరీ, శ్రీ సముద్ర బొడి ఆల్ గ్లోరీ, శ్రీ గురు శ్రీ గురు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం జ్ఞాతిమిరాందస్య జ్ఞానాంజనాశలక్య చక్షురన్మిలితాన్యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యో మనోభిస్తం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదామయం దాతి స్వాపదంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవంశ శ్రీరూపం సగణతం సహజనారఘునాథమితం తం సజీవం సద్వైతం సుమధూతం ప్రియజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణాపనాన్ సహగణలలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగపతి గోపేశ గోపికాకంచ రాధాకంద నమోస్తుతే. సప్త కంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి విషం ప్రణమామి హరిబే. వంచ కల్ప తరివ్యాశ కృపా సింధు మయే వచ్చ పరితానం పవనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో. జయ శ్రీకృష్ణ. కల్ శామ్ కో ఏ క్లాస్ హిందీ మే హోనీ చాయే అంగ్రేజీ మే? కల్ శామ్ కో హమ్నే గీతా కే మహత్వ పర ఉపదేశ దియా థా ఔర్ గీతా కే జో అనేక్ ప్రసిద్ధ విచార్ హై ఉన్కీ చర్చా కీ థీ. ఔర్ హమ్నే కహా థా ఆజ్ హమ్ చైతన్య మహాప్రభు జీ కే విషయ మే थोड़ी चर्चा करेंगे. चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? कौन है? स्वयं भगवान है. यदा यदा ही धर्म से गिदारी भवति भारत अभ्युथन धर्म से दुर्दात्मनम से जाम्या. अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ. किस लिए? पाणी तना साधु नाम विनशित दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाया सम्मी. किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए. तो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे आज से लगभग 520 साल पूर्व. और राधा कृष्णा प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में. और चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार. कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आप मेरे ऊपर दया कीजिए. तुम बिना के दयालु जगत संसार. आप जो हो अत्यंत दया दयालु हो. पतित भगवान हेतु तवा बतावा मोह सम पतित प्रभु नाम पर प्यार. और आप प्रकट किस लिए हुए हो? और प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए. तो हम सब पतित हैं. और हमारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं। महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन 3 प्रसिद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की। एक है चैतन्य चरितमृता, जिसकी रचना कृष्णदास कविराज ने की। और एक और है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना किसने की? चैतन्य मंगल की रचना लोचनदास ठाकुर ने की। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा में और कृष्ण भगवान की शिक्षा में कोई अंतर नहीं। सही कृष्णा, सही गौरा, सही जगन्नाथ, यही कृष्ण भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और यही कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं। सब लीलाओं की चर्चा तो हम नहीं कर सकेंगे, समय का अभाव है। तो हम थोड़ी देर के लिए उनकी लीलाओं और शिक्षा का वर्णन करेंगे। जब भगवान प्रकट होते हैं, वो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, जिसकी तुलना ना कोई साधारण व्यक्ति कर पाया है ना कर पाएगा। भगवान की जो अद्भुत लीला है, उनका ज्ञान हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, पर जब उनसे पूछा जाए कि आप क्या भगवान की लीलाओं की नकल कर सकते हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाते। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में इंटरफेथ सभा में था, तो एक स्वामी जी आके कहने लगे, स्वामी तुम लोग इस्कॉन वाले कृष्णा को इतना आदर क्यों देते हो? क्या हम सब कृष्णा हैं? आप क्यों बोलते हो एक ही कृष्णा है? हम सब कृष्णा हैं। तो मैंने कहा, जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने अद्भुत लीला प्रकट की थी, जैसे पूरे विश्व का दर्शन दिया माँ के मुंह में, और जैसे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया इत्यादि, उन्होंने अपना विस्तार किया। आप क्या इनमें से कोई लीला की नकल कर सकते हो? तो वो सज्जन कहने लगे, अगर नहीं कर सक अब आज तक नहीं किया तो ये मतलब नहीं हम कल नहीं कर सकेंगे। तो हमने कहा, आपको कितने साल ग्रेस पीरियड चाहिए? 20, 30, 40 साल मुझे बताओ, फिर 40 साल के बाद आप गोवर्धन पर्वत उठा पाओगे? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो अनेक व्यक्ति ये दावा करेंगे वो भगवान के अवतार हैं, पर जब इन ढोंगी व्यक्तियों से पूछो, आप कोई तो उनकी अद्भुत लीला की नकल कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता। आज आपके मॉरिशस में भी और सारे विश्व में, खास करके या बच्चों को कोई चुप कराया, और खास करके भारत में कई धर्म प्रचारक हैं, तो थोड़ा चमत्कार दिखा देते हैं, उनके शिष्य कहते हैं भगवान है, हमारे गुरुजी तो भगवान है। फिर गुरुजी को बोलो आप भगवान हो, तो गुरुजी कहते हैं मैं थोड़ी कहता हूँ भगवान है, तो शिष्य कहते हैं शिष्य कहते हैं और गुरुजी कुछ नहीं कहते। एक समय प्रभुपाद जी से ऑस्ट्रेलिया में एक रिपोर्टर ने पूछा था, अयू जी आर यू गॉड? प्रभुपाद ने कहा, एनी गुरु सेज इज जीओडी गॉड इज एक्चुअली डीओडी डॉट। मतलब ये है कि अगर कोई गुरु ये कहे, हालांकि गुरु को आदर दिया जाता है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, पर अगर गुरु कहे कि मैं स्वयं भगवान हूं, तो है मूर्ख। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। एक समय उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम था सची माता। तो एक समय एक ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में, और जगन्नाथ मिश्रा बकायदा संतों की सेवा करते थे अपने घर में। प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गोरमोंडे, और प्रभुपाद जी के जो पिता थे वो थे मिडिल क्लास कपड़े के व्यापारी, और प्रभुपाद जी के पिता संतों की बहुत देखभाल करते थे। सब प्रकार के संत प्रभुपाद जी के घर में रुकते थे, उनके पिता उनके देखभाल करते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने इस ब्राह्मण का स्वागत किया, और ब्राह्मण जो हैं अक्सर अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ये नहीं कि 10 नौकर चाकर हैं। तो इस ब्राह्मण ने अपना भोजन बनाया और भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे थे कि शैतान ने माई वहां पहुंचकर उसने उस भोजन को छुट्टा कर दिया। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद भगवान की इच्छा है कि यहां भूखा रहूं। तो ब्राह्मण ने सोचा ठीक है, जो साधारण व्यक्ति है वो एक दूसरे को दोष देते रहता है, तुम्हारे कारण ये दुर्घटना बीती, तुमने मेरा ये नुकसान किया, तुम मेरे ईर्ष्या रखते हो। पर ब्राह्मण किसी को दोष नहीं देता, अगर कठिन परिस्थिति में गुजरना पड़ता है तो वो सह लेता है, वो समझ जाता है या अगर भगवान की इच्छा है मैं कठिन स्थिति से गुजरूं तो मैं गुजर जाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे मेहमान हो, आपको जरूर फिर से भोजन बनाइए, मेरा शैतान लड़का अब तंग नहीं करेगा। तो फिर भोजन तैयार किया ब्राह्मण ने, फिर जब भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे थे फिर छुट्टा कर दिया था निमाई ने। तो ब्राह्मण ने सोचा ये शायद भगवान की इच्छा कि मैं भूखा रहूं, पर जगन्नाथ मिश्रा ने कहा मेरा शैतान, मेरे शैतान लड़के को मैं बंद कर रहा हूं धूली के कमरे पर, आप जरूर कृपा करके एक बार फिर से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाइए। ब्राह्मण चाहता तो नहीं था, पर नंद महाराज ने कहा तो मान गए। तो ब्राह्मण ने फिर से भोजन बनाया, लगभग रात के 12 बज गए थे, घर के सारे सदस्य सो गए थे। तो जब ब्राह्मण भोग लगा रहा था भगवान को, फिर से निमाई वहां पहुंच गए, और जब ब्राह्मण ने तीसरी बार देखा निमाई को उसने कहा फिर से तुम पहुंच गए, तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि तुम्हें बंद किया हुआ दूरी पर। फिर जगन्नाथ निमाई ने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रस्तुत किया, और निमाई ने कहा आप भोग किसको लगा रहे हो, मुझे तो लगा रहे हो। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, वो ब्राह्मण ने कहा तो विष्णु विष्णु विष्णु, देखो कितना अपराधी है, कहता कि मैं वो कृष्णा है। और फिर निमाई ने श्याम सुंदर का रूप प्रस्तुत किया, और निमाई ने कहा तुम ये भोग मुझे लगा रहे हो, किसी को ये नहीं कहना कि तुमने इस रूप का दर्शन लिया है। तो इस ब्राह्मण के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक तरह से उन्हें पता था कि अब कि निमाई भगवान है, दूसरी तरफ से उनको भगवान ने आदेश दिया था कि इसको बोलना मत कि तुमने रूप देखा है। इस प्रकार निमाई की अनेक लीलाएं हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है जिसका वर्णन चैतन्य मंगल में है। एक समय जब निमाई छोटे थे वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, और निमाई एक खूबसूरत पिल्ले को घर ले आया। अब पिल्ला समझते हो, पपी डॉग, कई पपी डॉग्स थे, देयर वर मेनी पपी डॉग्स एंड निमाई सिलेक्टेड द मोस्ट ब्यूटिफुल पपी डॉग एंड ब्रॉट हिम होम. निमाई ने सबसे खूबसूरत पपी डॉग को लेकर घर ले आए. निमाई की मां ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, तुम इस पिल्ले को घर ले आए, पपी डॉग को, जी 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 जी, कुत्ते को बाहर निकालो, निकाला है, क्या क्या कर. निमाई ने बोला, अगर ये कुत्ता पिल्ला बाहर जाएगा तो मैं भी बाहर जाऊंगा. तो माता के सामने समस्या थी. खैर, एक दिन निमाई गंगा में गए थे स्नान करने के लिए और सच्ची माता ने वो पिल्ले को, वो पपी डॉग को बांधा हुआ था रस्सी के साथ, खोल दिया और पपी डॉग घर से गुम हो गया, बाहर निकल गया. तो निमाई जब स्नान करने गए थे अपने मित्रों के साथ, उनका मित्र आया और कहने लगा, निमाई निमाई, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिल्ले को घर से निकाल दिया है. तो निमाई वापस घर लौटे. निमाई ने अपने सब साथियों को भेजा, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ पपी डॉग को. फिर उन्होंने देखा कि नवोदीप शहर के बीच में वो जो पिल्ला था पपी डॉग, दो पैरों पर नाच रहा था, दो हाथ ऊपर उठाए हुए थे, आंसू बह रहे थे नेत्रों से, बाल खड़े हो रहे थे, शरीर कांप रहा था शुद्ध भक्ति के लक्षणों के साथ, और वो हरे कृष्ण कीर्तन का कीर्तन कर रहा था. और वो पिल्ले पपी डॉग, he was chanting the holy name in great ecstasy. Well, दो हाथ ऊपर, दो पैरों पर नाच रहा था, आंसू बह रहे थे, वो सारा नवोदीप वहां इकट्ठा हो गया. सबने ऐसी घटना कभी देखी नहीं थी कि एक पपी डॉग कीर्तन कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, और सारे नवदीप के लोग वहां भागे भागे चमत्कार देखने के लिए. और सब कहने लगे, ये निमाई, ये देवता तो नहीं है, इसने दो दिनों में इस पपी डॉग पिल्ले को शुद्ध भक्त बना दिया. और फिर सबके सामने एक रथ आया, और वो रथ में, वो रथ आया किस लिए, इस पिल्ले को लेने के लिए, पपी डॉग को लेने के लिए. और वो पपी डॉग वो रथ में चढ़कर सबको अवर बाय बाय, अवर बाय बाय कहते कहते भगवान के धाम लौटा. तो अगर आप में से कोई ये कहे, निमाई kept a puppy dog, so why can't I keep a puppy dog? आप कहो कि निमाई ने पपी डॉग रखा था तो मैं क्यों नहीं रख सकता. आप अगर रखना चाहते हो तो आपको गारंटी देना पड़ेगा लिख के कि आप एक हफ्ते के अंदर उसको शुद्ध भक्त बना दोगे. निमाई ने तो दो दिन में बना दिया था शुद्ध भक्त, और ऐसा भक्त बनाया कि वो पपी डॉग हरे कृष्णा कर रहा था सबके सामने, और चारों तरफ नाम और आंसू बहा रहा था. जैसे भगवान शिव जी ने एक पूरे झैर के सागर को अपने कंठ में रोका, तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते. और फिर सारा शहर कहने लगा, ये निमाई, इसमें कुछ चमत्कार है, ये निमाई स्वयं भगवान होगा, क्योंकि किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी. छोटी आयु में ही निमाई एक संस्कृत के विद्वान बन गए थे. चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक नाम थे, एक नाम था गौर सुंदर, एक नाम था निमाई, क्योंकि नीम पेड़ के नीचे उन्होंने जन्म लिया था, और अनेक नाम थे. एक नाम था निमाई पंडित. पंडित का मतलब क्या है, जो विद्वान है शास्त्रों में. गोस्वामी का अर्थ क्या है, जिसने मन और इंद्रियों पर वश किया हो, स्वामी का क्या अर्थ जिसने मन और इंद्रियों पर वश किया हो। पर आज के वातावरण में, पता नहीं मॉरिशस में और भारत में, कईयों की जात का नाम है मिस्टर गोस्वामी, स्वामी और पंडित, पर बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं। ये नहीं कि वो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं। तो निमाई पंडित आज से आप सब, आप से नवदेव कौन कौन गए, नवदेव शहर का दर्शन किस किस ने लिया है? बस बहुत कम संख्या में आप भक्तों को यहाँ नवदेव की फिल्म दिखानी पड़ेगी। हर साल नवदेव परिक्रम होता है, उसमें मैं हर साल जाता हूँ नवदेव परिक्रम में, उसमें लगभग 1000 भक्त होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पार्टी में, और कोई 2000 भक्त होते हैं, 3000 भक्त देसी बंगला पार्टी में, और 1000-1200 अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के जो सदस्य हैं उनमें 700 तो रशियन होते हैं। रशियन भक्तों को बहुत शौक है नवदेव आने के लिए परिक्रमा में। तो निमाई पंडित संस्कृत के विद्वान बन गए थे छोटी आयु में ही, और नवदीप जो था 500 साल पूर्व विश्व का सबसे धनी स्थान था। जैसे धनी स्थान था आर्थिक दृष्टि से, और भारत के जो जितने संस्कृत के विद्वान थे सब कहाँ रुके हुए थे? वो रुके हुए थे नवदीप में। तो निमाई ने उस समय के संस्कृत के सब पंडितों को लगभग हरा दिया था, छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे, और लोग उन्हें कहते थे निमाई पंडित। निमाई पंडित का एक भरा गहरा संबंध था एक भक्त के साथ जिनका नाम था खोला चेकर, खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर ज्यादा धनी नहीं थे आप मॉरिशियन जैसे, आप मॉरिशियन तो सब धनी हो ना, नहीं वो धनी है नहीं? जब मैं इतनी मोटरों को देखता हूँ मंदिर के बाहर तो मुझे लगता है कि मॉरिशियस अभी अमेरिका के लेवल पर पहुंच गया। तो ठीक है, तो निमाई पंडित ये खोला बेचा श्रीधर जो थे छोटे से व्यापारी थे, उनका धंधा था केले के पत्तों के प्याले बनाने, और वो केला बेचते थे, और ये केले के पत्ते के प्याले बेचते थे किन्हें, जो कि गंगा नदी की पूजा के लिए आते थे। और खोला बेचा श्रीधर बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, अपने रहने के लिए उनके पास केवल एक कमरा था। आप तो रहते हो ईंट के मकान में, और खोला बेचा श्रीधर के पास एक पत्रे का कमरा था, और अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्चते थे लगभग। वो जो कमरा था ऊपर छत भी नहीं थी कोई, तो जब बारिश आती थी ना तो वो दीवार के साथ खड़े हो जाते थे कि भीगे नहीं, आप समझे, छत भी नहीं। और खोले में जब सीधा उनके पास एक ही धोती थी जिसमें 11 छेक थे, और उनके पास अपने घर में एक ही प्याला था। वो प्याला इतना टूटा हुआ था, पुराना था, कि चैतन्य भागवत में कहा गया है कि कोई चोर भी उसे नहीं छुएगा। आप समझे, अगर कोई चोर भी किसी चीज को नहीं छुएगा तो मतलब बिल्कुल निकम्मा हो। तो एक ही प्याला था, वो एक ही प्याले से पीते थे, खाते थे सब कुछ। तो इनकी छोटी सी दुकान थी। जब आप नर्मदे परिक्रम करो तो आप उस स्थान से गुजरते हो जहाँ की कोलेवजा श्रीदा की दुकान थी। तो निमाई पंडित ने छोटी आयु में ही एक संस्कृत का पाठशाला खोल दिया था, क्योंकि उनको पंडित थे छोटी सी आयु में ही। और निमाई पंडित रोज कोलेवजा श्रीदार की दुकान से गुजर कर जाते थे और रोज कोलेवजा श्रीदार से बनियागिरी करते थे। बनियागिरी समझते हो क्या भाव है केले का? एक पैसा दर्जन। तुम बहुत नफा कमा रहे हो, निमाई कहता था, इसका दाम आधा पैसे दर्जन होना चाहिए। और खोला पीछा श्रीदार दिन रात हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते रहता था, दिन रात। रात को भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो खोला पीछा श्रीदार के पड़ोसी थे उन्हें बड़ा क्रोध आता था। पड़ोसी कहते थे, ये पागल खुद भी नहीं खा सोता, हमें भी सोने नहीं देता, लगता है कोई भूत से सता रहा है इसलिए वो सो नहीं पाता। पर खोलेवजा सीधा दिन रात जाप करते रहते थे। निमाई रोज उनकी दुकान में आता था और निमाई उन्हें कहता था, खोलेवजा मुझे पता है तुम बहुत धनी आदमी हो। तो कोलेवजा श्रीदार कहता था, मैं जानता हूं मैं कितना धनी हूं। फिर निमाई पंडित कहते थे, एक दिन मैं सारे विश्व को दिखाऊंगा तुम कितना धनी हो। धनी तो वो थे क्योंकि हृदय में भगवत प्रेम था। धनी का मतलब ये नहीं आप मर्सिडीज गाड़ी में चला रहे हो और महंगी घड़ी पहन रहे हो, महंगे कपड़े पहन रहे हो। वो व्यक्ति धनी है जिसने भगवान को हृदय में बिठाया है, और जो व्यक्ति भगवान की सेवा में तन मन धन के साथ जुड़ना चाहता है। तो आप सब कौन हो, गरीब हो या धनी हो? आप लोग अस्थि करोड़पति हो। जैसे कि एक टीवी शो आया था ना कई साल पहले, कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने एक अमेरिकन शो की नकल की थी, Who wants to be a millionaire? तो हर व्यक्ति वो शो देख रहा था इस इच्छा के साथ, शायद हम करोड़पति बन जाए। पर आप सब करोड़पति बन चुके हो तो आप वो शो मत देखना, क्योंकि आपने आप प्रयास कर रहे हो भगवान के शरणागत होने के लिए। तो खोलो मुझे श्रीधर का निमाई बार बार कहता था, खोलो वेज मुझे पता है तुम कितने धनी हो, तुम अपने धन को छुपा रहे हो। तो खोला बेच कहता था, मैं जानता हूं जो मेरा धन है आप ले लो। तो एक दिन निमाई ने अपने विश्व अपने विराट रूप को प्रकट किया, जैसे कि भगवान ने विराट रूप प्रकट किया था अर्जुन के लिए, और अर्जुन को खास नेत्र दिए जिसके द्वारा अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन ले सके, है कि नहीं? और फिर भगवान ने अर्जुन के कहने पर चार हाथों का रूप धारण किया और फिर श्याम सुंदर का रूप धारण किया। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में माता पिता के समक्ष। और जब वासुदेव देवकी ने कहा आप साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लिया। तो भगवान कोई कार्य असंभव नहीं, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपने ही भक्तों को माता पिता के रूप में और साथियों के रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं, जिसकी तुलना ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा। तो एक दिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना विराट रूप प्रकट किया था और उन्होंने अपने भक्तों का, जाओ खोला बेटा सीता को ढूंढ कर लाओ। तो उनके भक्त जो थे खोले बच्चे सीधार को ढूंढने गए, पर निमाई ने उन्हें यह कहा था, निमाई ने उनको ढूंढना कोई कठिन नहीं होगा कि वो जोर जोर से हरे कृष्ण करके जाप कर रहा है। तो खोले बच्चे सीधार को ढूंढ कर कहा गया, चैतन्य महाप्रभु जी आपको बुला रहे हैं। तो खुशी से दौड़ते दौड़ते आए। फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रसिद्ध भक्तों के लिए अपना विराट रूप प्रस्तुत किया और हरेक से पूछा, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। खुदा बेटे सीधा को कहा, मांगो क्या ऐश्वर्य चाहिए। खुदा बेटे सीधा ने कहा, अगर आप मुझे कोई वर बेनिडिक्शन देना चाहते हो तो एक वर ये दीजिए कि मैं सदा आपके साथ में रहूं, आप सदा मेरी दुकान में आओ सौदा करने के लिए और मैं आपसे सौदा करूं। जब चैतन्य निमाय पंडित महाप्रभु की दुकान में जाते थे और उनसे सौदागिरी करते थे तो श्रीधर कहता था, आप मेरी दुकान में क्यों आते हो रोज मुझे तंग करने के लिए, दूसरे की दुकान में जाओ वहां भी केला मिलता है। पर फिर निमाय पंडित कहते थे, नहीं नहीं नहीं, तुम स्टडी सप्लायर हो, तब मुझे तुम्हारी दुकान से ही खरीदना। तो खुदा मुझे सीधा ने कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मैं हर जन्म में आपके साथ रहूं और हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओ सौदागिरी करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए तो तुमको एक महल दे दूंगा, जो ऐश्वर्य चाहिए मेरे से मांगो, भगवान करे कोई कार्य असंभव है। भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था सुदामा ब्राह्मण। सुदामा ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से गरीब थे। उनके पत्नी को पता था कि मेरे पति का एक मित्र था बचपन का जो बड़ा धनी है, जिसके 16,108 महल है द्वारका में और हर महल सजा हुआ है हीरे मोतियों के साथ। तो पत्नी ने पति से कहा, हम इतने गरीब हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाना नहीं है खाने के लिए, एक साधारण कुटिया में वो रह रहे थे, तुम जाओ अपने धनी मित्र को मिलो, शायद वो हमारा सहयोग दे दे। और निकलते समय सुदामा ने कहा, पर मैं कुछ ले जाऊं उनके लिए। तो उन्होंने क्या कहा, क्या ले जाओ, चिप राइस। खैर उनके सुदामा ब्राह्मण पहुंचे भगवान के पास, भगवान ने उनका बड़ा अच्छी तरह स्वागत किया, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है ब्राह्मण के स्वागत कैसे करते हैं, पहले उनके चरण धोते हैं इत्यादि। तो ब्राह्मण का स्वागत किया, फिर भगवान ने बिठाया और उन्होंने अपने बचपन की लीलाओं का स्मरण किया और बिना मांगे भगवान ने पूछा, तो मेरे लिए कोई लाए नहीं सुदामा। तो सुदामा ने हिचकते क्या दिया, वो चावल के दाने दिए। तो कुछ मांगे बिना सुदामा ब्राह्मण घर की तरफ लौट गए और रास्ते में वो सोच रहे थे, मैं इतनी दूर से आया था मेरे धनी मित्र को मिलने के लिए और मैंने कुछ मांगे बिना मैं अभी वापस लौट रहा हूं। मेरी पत्नी पूछेगी, कुछ मांगा तुमने, तो मैं क्या कहूंगा। तो ऐसे सोचते सोचते सुदामा ब्राह्मण घर लौटे और जब घर लौटे उन्होंने क्या देखा, क्या देखा, एक महल। वो जो पहले एक कुटिया थी टूटी हुई, वही को टेक महल बन गए, 100% रेनोवेटेड। और आप लोग अपने पुराने मकान को रेनोवेशन कराते हो तो भगवान की कृपा से वो कुटिया महल बन गए। और उनकी पत्नी जो बिल्कुल बिल्कुल पतली सी थी, क्योंकि खाना भी नहीं मिलता था हमेशा, बड़ा अच्छा स्वास्थ्य हो गया। और उनकी पत्नी जो फटी हुई साड़ी पहन रही थी पहले, अब सजी हुई थी बनारसी सिल्क साड़ी और हीरे मोतियों के साथ। तो सिद्धामा ब्राह्मण समझ पाए ये कैसे संभव हुआ है, उनके घनिष्ठ मित्र कृष्णा के सहयोग से। हाँ, तो आप कहोगे हम लोग आज घर लौटेंगे तो हमारे हमारा मकान में क्या महल बन गया होगा? और निदा आप पूछ सकते हो, पूछते हैं कि भगवान ने सुदामा ब्राह्मण को तो चमत्कार दिखा दिया, उनकी कुटिया को महल बना दिया, हमारे घर को भी महल बना दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, हमारी श्रद्धा भगवान में बढ़ जाएगी। तो भगवान को पता है कि अगर आपको वो सुदामा ब्राह्मण की सुविधा दे तो आप माया में गिर जाओगे। तो इसके लिए भगवान हमें उतना ही देते हैं जितना हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होना चाहिए, और जिसके द्वारा माया में नहीं गिरेंगे। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो खोले हुए जो श्रीदार, जब भगवान ने पूछा मैं तुम्हें कोई वर दूं, उन्होंने कहा कोई वर नहीं चाहिए, वही वर दीजिए जिसके द्वारा मैं हमेशा आपके संग में रहूं। तो भक्त की यही प्रार्थना होती है। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, न धनम जन जनम न सुंदरम कविता वा जगदीश करें ममा जन्मनी जन्मेश्वर भक्त भक्ति हे भगवान, मुझे ना सुंदर स्त्रियों की संगत चाहिए, ना धन चाहिए, ना भौतिक शिष्य चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? मुझे सिर्फ आपकी सेवा का अवसर चाहिए हर जन्म में, ये है भक्त की इच्छा। तो तो उस समय एक बड़े प्रसिद्ध भारत में संस्कृत के विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी भारत के सबसे प्रसिद्ध पंडित थे। आज के जमाने में तो कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फिल्मी स्टार हो तो हीरो बन जाता है, पर प्राचीन समय में संस्कृति ज्यादा ऊंची थी और जिसके पास अध्यात्मिक ज्ञान था, खास करके संस्कृत भाषा का ज्ञान, तो उसे बड़ा आदर दिया जाता था। तो केशव कश्मीरी देवी सारस्वती के भक्त थे और उन पर सारस्वती की खास कृपा थी। इतिहास कोई नहीं था जो उनको हरा पाया संस्कृत के ज्ञान में। केशव कश्मीरी के पास इतना तेज ज्ञान था, बड़े बड़े पंडित आते थे उनके सामने पर वो मिनट में उन्हें हरा देते थे। और जब हरा देते थे फिर कहते थे मुझे पत्र दो, विजय पत्र, कि मैंने तुम्हें हरा दिया। तो इसके पास इस प्रकार उनके बहुत बड़ी एल्बम थी, मैंने इतने पंडितों को हरा दिया। तो केशव कश्मीरी ने सुना कि नवद्वीप में अनेक प्रसिद्ध पंडित हैं और वहां एक छोटा सा पंडित है 11 साल का जो इतना तेज है कि उसने नवद्वीप के सारे पंडितों को हरा दिया। तो केशव कश्मीरी ने सूचना भेजी नवद्वीप में, मैं आकर आपके शहर के प्रसिद्ध पंडित से संस्कृत भाषा में डिबेट करना चाहता हूं। तो जैसे ये सूचना मिली उन पंडितों ने एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा नाउ केशव कश्मीरी इज कमिंग टू आवर टाउन, ही वांट्स अस टू सिलेक्ट समबडी टू रिप्लेस टू फाइट विद हिम टू आर्ग्यू विद हिम हु इज रेडी। केशव कश्मीरी हमारे शहर में आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम कोई किसी को खड़ा करें उनके सामने संस्कृत भाषा की डिबेट में कौन तैयार है आप में से? सब घबरा गए। केशव केशविनी का नाम सुनते ही सब ने कहा, हम तो नहीं जाने को तैयार, हम तो जाने को तैयार नहीं, हम तो जाने को तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं था। फिर उन्होंने कहा पंडितों ने, हम निमाई पंडित को आगे खड़ा कर देते हैं। निमाई पंडित तो केवल 11 साल का है। अगर केशव केशविनी ने अगर केशव केशविनी ने उसे हरा दिया तो हम कहेंगे, अरे बच्चे को तो हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर केशव केशविनी ने उन्हें हरा दिया तो हम कहेंगे, अगर हमारे शहर का बच्चा हरा सकता है उसे तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो उन्होंने सूचना भेजी कि आप आ सकते हो और हमारे शहर में केशव केशविनी के हमारे शहर में 11 साल का पंडित है निमाई, उससे आपकी डिबेट होगी। तो केशव केशविनी बहन बाजा लेकर आए नवदेव, जैसे आपके मॉरिशस में तो शायद ऐसे नहीं है, भारत में जब ये पॉलिटिशियन लोग भाषण देते हैं तो ट्रकों में वो लाते हैं आदमियों को जय जिंदाबाद कहने के लिए। मॉरिशस में भी करते हैं नहीं, आपके पॉलिटिशियन जो ज्यादा सादे हैं, भारत के जो ज्यादा तेज हैं। तो केशव केशविनी अपने भक्तों को लेकर वो आ रहे थे नवद्वीप की ओर, और गंगा के तट पर केशव केशविनी मिले निमाई पंडित से। उस समय निमाई पंडित संस्कृत सिखा रहे थे अपने विद्यार्थियों को, और निमाई पंडित केशव केशविनी आ रहे थे अपने चमचों के साथ। चमचे समझते हो, बड़े झंडे वंडे लेकर के, केशव केशविनी की जिंदाबाद। तो केशव केशविनी मिले निमाई पंडित से जो केवल 11 साल के थे। तो केशव केशविनी ने पूछा, आप ही हो निमाई पंडित? निमाई पंडित ने कहा, हाँ हम ही हैं निमाई पंडित। तो केशव केशविनी ने कहा, आपकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है, आप सुनाइए हमें कुछ संस्कृत के श्लोक। केशव केशविनी निमाई ने कहा, आपके सामने मैं क्या सुनाऊं, सूर्य सूर्य को दिया थोड़ी दिखाया जाता है, आप से इतने बड़े पंडित हो आप, मैं तो संस्कृत की एक लाइन भी ठीक कंपोज नहीं कर सकता, आई कैन इवन कंपोज वन लाइन इन संस्कृत, मैं तो ज्ञान मूर्ख हूं, आप चर्चा कीजिए। तो केशव केशविनी ने एक घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना की, 100 श्लोकों की गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए। और फिर उन्होंने पूछा, सो निमाई हाउ डू यू लाइक माई पोइट्री, आपको कैसे लगा मेरी कविता? निमाई ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पर फिर निमाई ने वही 100 श्लोकों का फिर से वही 100 श्लोकों का फिर से उच्चारण किया और कहा, इन श्लोकों में यही गुण थे और इन श्लोकों में यही अवगुण है। जब केशव केशविनी ने ये अवगुणों के विषय में सुना तो वो बेहोश हो गए। और जब उन्होंने सुना कि निमाई ने एक बात सुनने से सारे 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया है, जो व्यक्ति एक बार सुनने से किसी विषय को कंठस्थ कर ले उसे क्या कहा जाता है? श्रुति धर, किसने कहा? उसे कहा जाता है श्रुति धर। जैसे परीक्षित महाराज जो विश्व के सम्राट थे, एक दिन वो जंगल में थे, उन्हें प्यास लगी थी, तो पानी की खोज में एक कुटिया में पहुंचे। उन्हें दूर से उस कुटिया में थोड़ी बिजली नजर आई, तो समझ गए वहां कोई उपस्थित होगा। जब वो कुटिया में आए तो उन्होंने देखा वहां एक संत बैठे हैं जो चिंतन में जुड़े हुए हैं भगवान के, और उस संत ने इनका परीक्षित महाराज का बिल्कुल स्वागत किया। उसके बाद देखा भी, शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई दुश्मन भी आए आपके घर में तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। सबसे बेहतर है अगर आप उसका स्वागत करो प्रसाद के साथ। प्रसाद के साथ नहीं कर सकते तो जल के साथ, जल के साथ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें बैठने के लिए चटाई तो दो, यानी कि आपका मेहमान खड़े रहे। और चटाई भी नहीं दे सकते तो कम से कम मीठे शब्दों से तो स्वागत करो। पर इन्होंने परीक्षित महाराज की तरफ देखा भी नहीं, और परीक्षित महाराज गुस्से में निकले। आगे उन्होंने कुटिया के सामने एक मरे हुए सांप को देखा, वो सांप को लेकर हार के रूप में चढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने अपमान महसूस किया था कि उस संत ने उनसे कुछ पूछा भी नहीं। उस संत के बेटे का नाम था श्रृंगी, वो श्रृंगी बाहर खेल रहा था। श्रृंगी ने देखा राजा मेरे पिता को मिलकर तेजी से जा रहा है, फिर जाके पिता से पूछे तो राजा ने क्या बात की। जब वो अंदर आया तो उसने देखा कि पिता के गर्दन में एक मरा हुआ सांप हार के रूप में चढ़ाया हुआ था, तो उनको शक हुआ कि ये राजा की हरकत होगी। तो राजा के पीछे वो भागे भागे भागे, और जब उन्हें पता लगा कि राजा की ये हरकत थी तो उन्होंने राजा को श्राप दिया, 7 दिन के पश्चात तुम्हारा अंत आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग को कोई सूचना देता है डॉक्टर साहब, अरे भाई 6 दिन में तुम्हारा अंत आ जाएगा, तो हम घबरा जाते हैं। पर परीक्षित महाराज घबराए नहीं, उन्होंने उल्टा अपनी समाप्ति का की तैयारी की। उस समय के संतों को निमंत्रण देकर, और उन्होंने सबसे ये पूछा जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। अलग अलग संतों ने अलग अलग उपाय दी, पर शुकदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी के उपदेश को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आप कृष्णा संबंधित ज्ञान प्राप्त करो। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की जिसमें कितने श्लोक हैं, 18,000। तो हजारों संत सुन रहे थे ये जो उपदेश शुकदेव गोस्वामी दे रहे थे, और उनमें एक संत थे सूता गोस्वामी। तो नैमिषारण्य लखनऊ के पास है, जहां अनादि काल से आध्यात्मिक कार्यक्रम होते आ रहे हैं। तो नैमिषारण्य में संतों की एक सभा चल रही थी, और वहां उन्होंने सूता गोस्वामी को चुना मार्गदर्शन देने के लिए। और सूता गोस्वामी ने वही 18,000 श्लोकों को सुना दिया जो कि उन्होंने स्वीकार किया था शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। तो जो व्यक्ति एक समय सुनने में किसी चीज को बिठा ले हृदय में, उसे कहा जाता है श्रुति धरा। तो चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित के रूप में जो 100 श्लोकों की रचना की थी उन्हें एकदम कंठस्थ कर लिया। और जब उन्होंने केशव कश्मीर ने देखा कि वो 100 श्लोकों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया, और फिर से जब सुनाया तो वो कहने आश्चर्यचकित हो गए। वो कहने लगे मैंने तो वायु की तेजी से तुम्हें श्लोक सुनाए थे, तुमने कैसे याद कर लिया एक बार सुनने में। तो निमाई के जो विद्यार्थी थे वो केशव कृष्ण की हंसी उड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि निमाई ने केशव कृष्ण की रचनाओं के गुणों को सुनाया और कमियों को, और जब उन्होंने कमियों को सुनाया तो केशव कृष्ण उत्तर नहीं दे पाए, और केशव कृष्ण जब उत्तर नहीं दे पाए निमाई के जो साथी थे वो हंसी उड़ाने लगे, देखो इन्हें हमारे गुरु ने हरा दिया। पर निमाई ने रोका, जैसे हम कह रहे थे सुबह की क्लास में ह्यूमिलिटी या निम्रता आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो निमाई के विद्यार्थी केशव कृष्ण की हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि केशव कृष्ण निमाई के जो विचार जो दो करेक्शन थे उसका उत्तर नहीं दे पाए। निमाई ने रोक दिया, निमाई ने कहा केशव कृष्ण बहुत थके हुए हैं, कल जवाब देंगे। तो उस दिन रात को केशव कृष्ण सरस्वती देवी के चरणों में प्रणाम किया और केशव कृष्ण ने कहा आप हमेशा मेरे माध्यम से मेरी सुरक्षा करते आए हो, पर आज आपने कुछ नहीं बोला। तो सरस्वती ने कहा ये जो लड़का है निमाई ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं भगवान है, मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती। और फिर अगले दिन केशव कृष्ण आए और निमाई के शरणागत हो गए। तो निमाई पंडित बहुत ऊंचे कोटि के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, और उन्होंने एक शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। तो केशव कृष्ण ने अपना संकीर्तन आंदोलन भी आरंभ कर दिया था नवद्वीप में। उन दिनों में नवद्वीप में कई स्मार्ट ब्राह्मण थे। ये जो स्मार्ट ब्राह्मण हैं वो समझ नहीं पाते शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण हैं और क्या होना चाहिए। स्मार्ट ब्राह्मण्स को यही चिंता रहती है हमारी आमदन में नुकसान ही आ जाए। चैतन्य माई ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, कई मुसलमान और जो ब्राह्मण थे नवद्वीप के उन्होंने शिकायत की, किससे? वहां के मुसलमान राजा से, उसके प्रतिनिधि से। उसको कहने लगे मुसलमानों ने कहा अगर हम निमाई पंडित के संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। और एक मुसलमान था जो बार बार शिकायत करता था रोको रोको निमाई के संकीर्तन आंदोलन को, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। और जब भी वो निमाई पर हुए जो था शिकायत करने वाला स्वयं वो हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहता था। तो एक दिन काजी ने कहा अरे भाई तुम रोज आते हो शिकायत करने के लिए, रोको 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 चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को, और जब भी मैं देखता हूँ तुम हरे कृष्ण ही बोल रहे हो। एक तरह से बोलते रोको 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 और तुम हरे कृष्ण का। तो उस व्यक्ति ने कहा ये बात सच है, जब से मेरा परिचय हुआ ये हरे कृष्ण महामंत्र से ये मेरे मुंह से निकलता ही नहीं, ये मुंह के साथ अभी जुड़ गया। तो तो ब्राह्मण थे हिंदू ब्राह्मण वो जाकर राजा के प्रतिनिधि से शिकायत कर रहे थे ये निमाई पंडित हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है, उसने पागलों जैसे संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है और हमारे हिंदू धर्म की बेइज्जती हो रही है। जैसे कई बार जब हमारे हम भी खुद गए थे न्यूयॉर्क वगैरह में, जब भक्तों के साथ हरिनाम करने जाते हो तो कई हिंदू लोग भी देखते हैं, कई तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, गुड वर्ड, कई कहते हैं तुम्हारे देश को खराब कर रहे हो, हमारे नाम को खराब कर रहे हो। अरे भाई, भगवान के नाम का उच्चारण करने में कौन खराब होता है। खैर, तो कई लोग शिकायत कर रहे थे। और हमारे मायापुर मंदिर के पास एक स्थान है शिवास अंगन, आप लोग गए हो शिवास अंगन में? तो शिवास अंगन में महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। और ये संकीर्तन आंदोलन जब आरंभ हुआ था, इसका ये परिणाम हुआ कि हिंदू ब्राह्मण और कई मुसलमानों ने मिलकर शिकायत की राजा के प्रतिनिधि के साथ। तो राजा के प्रतिनिधि को जब इतनी शिकायतें मिली, तो उसने अपने सिपाहियों को भेजकर, पहले सिपाही आए भक्त कीर्तन कर रहे थे, रोको 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 रोको, उन्होंने संकीर्तन नहीं रोका, फिर उन्होंने जबरदस्ती रुकवाया और मृदंगा तुड़वा दिए। अगर तुम लोग ये संकीर्तन आंदोलन को बंद नहीं करेंगे तो हम सबको जेल में डाल देंगे, सबको मुसलमान बना देंगे। तो उस समय महाप्रभु जी वहां उपस्थित नहीं थे। जब ये सूचना महाप्रभु जी के पास पहुंची, महाप्रभु ने कहा ये संकीर्तन आंदोलन नहीं रुकेगा और 100,000 भक्तों को एकत्रित करके महाप्रभु जी चले संकीर्तन करते हुए चांदकाजी के महल पर। आप लोग भी मॉरिशस में जब रात के समय हरि नाम करते हो तो लैंप्स साथ उठाते हैं ना, वो ही कॉल है। मेरे को याद है कई साल पहले मैं एक मॉरिशस के कीर्तन में गया था तो लैंप उठा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु जी अपने साथी को लेकर लैंप्स को उठाते हुए पहुंचे चांदकाजी के। जब चंद खाजी ने देखा इतना बड़ा मोर्चा आ रहा है तो वो छुप गए, वो डर गए चैतन्य महाप्रभु का सामना करने से। खैर, जब महाप्रभु वहां पहुंचे, उन्होंने संदेश भेजा कि मैं मिलने आया हूं। फिर चंद खाजी ने उन्हें बुलाया। चंद खाजी ने कहा तुम्हारे पिता मेरी अच्छी दोस्ती है, और दोनों की चर्चा हुई। तो चंद काजी ने फिर एक आदेश दिया, वो दोनों का एक वार्तालाप हुआ चैतन्य महाप्रभु चंद काजी का। और चंद काजी ने एक यह आदेश दिया, भविष्य में मेरे आगे की पीढ़ी आगे की पीढ़ी कोई भी कभी भी इस संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगा। और चंद काजी ने कहा जिस दिन मैंने अपने पति दीदे को भेजा था तुम्हारे मृदंगा को तोड़ने के लिए, उस दिन रात को एक शेर आया और तेज नाखून के साथ मेरे शरीर को चीरते हुए उसने कहा अगर भविष्य में तुमने कभी भी निमाई पंदर के संकीर्तन आंदोलन को रोका तो तुम्हें मैं चीर दूंगा। और फिर उन्होंने वो निशाने दिखाए, उन्होंने वो निशाने दिखाए निमाई पंदर को, तो खुद ये चंद काजी भक्त बन गए। तो महाप्रभु ने पहला बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लीड किया था। प्रभुपाद जी कहते थे कि भारत में लोग महात्मा गांधी को क्रेडिट देते हैं फॉर स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहले शुरू हुआ था किसके माध्यम से? चैतन्य महाप्रभु जी के माध्यम से। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने 8-10 घंटे का लगातार कीर्तन किया, लगातार निरंतर नॉन स्टॉप कीर्तन किया। और 8-10 घंटे में कीर्तन करने के बाद उन्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो पानी पीने के लिए कहां गए चैतन्य महाप्रभु? खोला भाई सीधार के घर, और खोला भाई सीधार के घर में कितने बर्तन थे, कितने बर्तन थे? एक बर्तन था टूटा हुआ जिसे चोर भी नहीं छुएगा, और जिसे जिसमें खोला भाई सीधार खाते थे पीते थे सबको। तो खोला भाई सीधार के घर में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु, और वही ग्लास जिसमें खोला भाई सीधार पीता था उसे उठाकर उसमें पानी लाकर पीने लगे। वो खोला भाई सीधार के झूठे ग्लास है। खोला भाई सीधार ने कहा, महाप्रभु आप भगवान हो, आप मेरे झूठे ग्लास से नहीं पी सकते। महाप्रभु ने कहा, मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं, तुम्हारे झूठे ग्लास से पी कर। महाप्रभु ने इतना आदर दिया अपने भक्तों को। तो महाप्रभु खोला भाई सीधार के घर में गए, और वो टूटा हुआ बर्तन जिसमें खोला भाई सीधार खाते थे पीते थे उसको लेकर उससे क्या किया, उन्होंने पानी पिया। तो इस प्रकार निमाय पंडित की अनेक प्रसिद्ध लीलाएं हैं। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, एक ब्राह्मण था जो नवोदित धाम में कहता था, ये श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं उनके घर में आते हैं रोज, चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना कीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो उनके घर में आते थे और सारी रात कीर्तन होता था। और चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि अपने दिव्य लक्षणों को प्रकट कर रहे थे उस सभा में, केवल तो चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय साथी थे, उन्हें ही अधिकार था अंदर उपस्थित होने के लिए। तो एक ब्राह्मण जो था उसने उसके हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष। ईश्वर द्वेष हमारे शत्रु है या मित्र है? हाँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। शत्रु है, जोर से बोलो ना, शत्रु है। आपको जरा डाउट है? तो ईर्ष्या द्वेष हमारे शत्रु है। तो ये ब्राह्मण के घर मन में ईर्ष्या थी। जब हम देखते हैं कि कोई भक्त आध्यात्मिक परिवर्तन कर रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए। जब हम देखते हैं किसी भक्त में त्याग की भावना प्रकट हो रही है, हमें खुश होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि भक्त मेहनत करके ग्रंथों का वितरण कर रहा है, हमें खुश होना चाहिए। हम देखते हैं कोई अच्छा मंदिर बना रहा है, हमें खुश होना चाहिए। तो ऊपर ये ब्राह्मण के मन में ईर्ष्या द्वेष था। तो उसने श्रीवास की बेइज्जती करने के लिए श्रीवास के दरवाजे के आगे शराब इत्यादि देवियों के देवताओं की पूजा की जो सामान है, दुर्गा की पूजा का सामान सामने रख दिया। श्रीवास ने जब अगले दिन सुबह दरवाजा खोला, देखा ओ ये सब सामान जो दुर्गा देवी की पूजा का है। तो उन्होंने कहा, देखो पड़ोसी, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, मैं तो दुर्गा का भक्त हूं। देखो सबने विश्वास नहीं किया और गोबर के साथ उन्होंने साफ कर लिया। ये जो ब्राह्मण था इसे कोढ़ की बीमारी हो गई, और कोढ़ की बीमारी लेप्रसी की बीमारी हो गई, और ये तड़प से गया। उसने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके भक्त के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखा। तो महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हें हजारों साल तड़पना चाहिए, क्योंकि एक शुद्ध भक्त के विरोध में उन्होंने ईर्ष्या द्वेष अनुकूल किया, और ये ब्राह्मण तड़प से गया। फिर महाप्रभु जब संन्यास देकर फिर लौटे कई साल बाद, तो फिर ये ब्राह्मण फिर आया, और फिर महाप्रभु ने कहा कि तुम जाओ शिवा से माफी मांगो। फिर ये आए शिवा के पास और शिवा ने खुशी से माफी दी। तो इस कथा का संक्षेप में क्या संदेश है कि अगर हम ईर्ष्या द्वेष रखेंगे तो भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और ईर्ष्या द्वेष के कारण जो वैष्णव अपराध है उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, जिस प्रकार एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है पागल हाथी के आने से, तो उसी प्रकार जो भक्ति का जो लाभ है वो हम नहीं उठा सकते इस वैष्णव अपराध के द्वारा। अनेक प्रकार के अपराध हैं, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, गुरु अपराध, हरिनाम अपराध, इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। अगर हम अपराधों से नहीं बचेंगे तो हम हरिनाम का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो ये ब्राह्मण जो था, हाँ, इसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष थी, फिर उसने क्षमा मांगी और श्रीवास ने क्षमा कर दिया। जैसे आप भगवत में पढ़ते हो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा, किस प्रकार दुर्वासा मुनि के हृदय में ईर्ष्या द्वेष था और उसने प्रयास किया, जैसे दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को जला दे निकले, पर भगवान ने उनकी सुरक्षा की। तो हमें वैष्णव जीवन में वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, और वैष्णव अपराध से बचने के लिए हमने दूसरे भक्तों के प्रति आदर रखना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए हम आदर कर देंगे हमें भी आदर मिलना चाहिए। चाहे आपका आदर नहीं भी मिले, आप सेवा करो, और सेवा करोगे तो आप भक्ति के मार्ग में निम्रता को अनुकूल कर सकोगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकोगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में ऐसे है, सूचना तो बहुत है, हमने तो केवल थोड़ा ऐसे ही आपको कहा, बोलो तो कल सुबह भी इस विषय में आगे बोल सकते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और वो प्रकट हुए हैं अत्यंत दया दयालु अवतार के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा क्या थी, हम सब आध्यात्मिक परिवर्तन करें। जाने ताको ताए खाओ कृष्ण, जिसे भी तुम मिलो उसे क्या कहो, कृष्ण का उपदेश दो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरि नाम का उच्चारण किया, हरि नाम का प्रचार किया। जब महाप्रभु जी स्वयं छोटे थे, वो रोना रोते थे, रोकते थे कब, जब ये हरि नाम उन्हें सुनाया जाता था। तो वैसे ये हरि नाम का वर्णन तो शास्त्रों में है, वो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे जिन्होंने हरि नाम का विस्तार किया, प्रचार किया। और उनकी भविष्यवाणी थी क्या, पृथ्वी आचार्य नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार विश्व में जितने नगर है गांव है सब जगह हरिनाम का उच्चारण होगा। 35 साल पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि यह संभव हो पाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे परम गुरु जी, उन्होंने अपने कई प्रतिनिधियों को भेजा था विदेशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर ज्यादा सफलता के बिना वो लौट गए थे। तो हमारे गौड़िया वैष्णव भी सोच रहे थे, हाँ महाप्रभु जी की भविष्यवाणी तो है पर कलयुग का बहुत गहरा हो गया है, ये संभव नहीं हो पाएगा। पर भक्ति सिद्धांत जी को पूरा विश्वास था कि अगर हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो सफल हो पाएगा। और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि अगर गुरु का आदेश है। 1921 में प्रभुपाद जी मिले थे अपने गुरु महाराज से, और पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, तुम पढ़े लिखे हो ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। तो यही था प्रभुपाद जी का प्रयास। पर प्रभुपाद जी का पूरा विश्वास था कि अगर हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे और प्रयास करेंगे, ये महाप्रभु जी का जो आंदोलन है विश्व के हर कोने में पहुंचेगा। तो आज विश्व के हर कोने में हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण हो रहा है, विश्व के हर कोने में गीता का अध्ययन हो रहा है, विश्व के हर कोने में ये वैदिक संस्कृति को लोग आज अपना रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की कृपा है और उनकी भविष्यवाणी है। तो आप सब मॉरिशस में कृष्ण भक्ति को गंभीरता से अनुकूल कीजिए। जैसे आप जानते हो जब श्री प्रभुपाद जी आपके शहर में आए थे पहली बार आपके देश में, वो इतने प्रभावित हुए थे कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मॉरिशस कैन बिकम द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री ऑन द प्लैनेट। मॉरिशस पृथ्वी पर पहला देश बन सकता है जिसने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है। तो हमारा प्रचार है महाप्रभु जी लीला का स्मरण करना, महाप्रभु जी के संदेश का प्रचार करना और इस शिक्षा को हमारे चरित्र में उतारना। हमारा चरित्र होना चाहिए बिल्कुल शास्त्र पर आधारित, और अगर शास्त्र पर आधारित रहेगा तो इसका हम प्रभाव दूसरों तक ही पहुंचेगा। और इसलिए हमें गंभीरता से इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को ग्रहण भी करना चाहिए और इसका वितरण भी करना चाहिए। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लो। पतित पवन हेतु तवा बतारा, चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए पतितों को उद्धार करने के लिए। और आप सब मॉरिशस में पतित हो या महात्मा हो, हाँ सब, तो महाप्रभु को प्रकट हुए आपके उद्धार के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी सब अवतारों में अत्यंत दयालु हैं और जिन्होंने यह महामंत्र का प्रचार किया और हमें महामंत्र को अपनाना चाहिए और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी की और लीलाओं का वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो जरा 10 मिनट का स्टैंडिंग कीर्तन करेंगे इनमें। कोई प्रश्न महाप्रभु जी के विषय में, कोई समझ आया आप लोगों को? हाँ, कल सुबह भी क्लास होगी 8 बजे। नो क्वेश्चंस कमेंट्स? यस है चांद काजी को। अच्छा, इनका प्रश्न है जो भगवान का प्रचार कर रहा है उसे क्या मिलेगा? भगवान की कृपा प्राप्त होगी। थोड़ा कीर्तन कर ले। अभी आप लोग प्रसाद के लिए जा रहे हो कि सबने प्रसाद खा लिया? हाँ ले लिया, अभी डबल खाओगे। थोड़ा कीर्तन करें।